हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लंच के बाद अर्णव दोबारा अपने केबिन में नहीं आया और न ही धृति उसे फोन करने की हिम्मत कर सकी। खाना उसी टेबल पर पड़ा रहा, पर धृति ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा। काम में मन नहीं लग रहा था, उसका ध्यान अर्णव पर अटका हुआ था। उसने देखा था कि किस कदर उसका गुस्सा और नफ़रत उस पर हावी थी और कैसे वो अपने गुस्से को बाहर आने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था और आखिर में केबिन से बाहर निकल गया था। पर आज उसने धृति को कुछ नहीं किया, वरना हर बार उसके गुस्से का शिकार धृति ही होती थी। न चाहते हुए भी धृति के दिलो दिमाग पर अर्णव छाया हुआ था और उसकी बेचैन व्याकुल निगाहें बार बार दरवाजे की ओर घूम रही थीं। शायद उसे अर्णव का इंतजार था, पर अर्णव एक बार गया सो दोबारा लौटकर नहीं आया। देखते देखते ऑफिस के घंटे खत्म हो गए। रोज की तरह माधुरी धृति को घर जाने के लिए बुलाने आई। जब तक धृति ने अपना सामान पैक किया, माधुरी ने अर्णव का सामान पैक कर दिया। फिर उसने अपना ऑफिस बैग धृति की ओर बढ़ाते हुए कहा, सर ने कहा है कि आप इसे अपने साथ ही घर ले जाएं। धृति ने चुपचाप बैग ले लिया, फिर जरा हिचकिचाते हुए बोली, वो खुद कहाँ है? अरे सर की आज लंच के बाद मीटिंग थी, आपको नहीं मालूम? माधुरी का सवाल सुनकर धृति ने अचरज से उसे देखते हुए सिर हिलाकर इनकार किया। अर्णव की असिस्टेंट होने के नाते उसे अर्णव से जुड़ी हर बात पता होनी चाहिए थी, पर उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आप कल जल्दी चली गई थी ना, शायद इसलिए आपको नहीं पता, माधुरी ने सहजता से जवाब दिया, जिस पर धृति ने बस सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों ऑफिस से निकल गए। रोज की तरह पहले माधुरी ने उसे ड्रॉप किया, फिर अपने घर के लिए निकल गई। धृति के दिलो दिमाग पर आज अर्णव का ख्याल हावी था। घर पहुंचकर उसने सर झटका और लग गई अपने काम में। अर्णव रात को लगभग 9 बजे घर लौटा, वो भी पूरी तरह थका हारा। उसने धृति को देखकर भी अनदेखा कर दिया। डिनर के वक्त भी दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छाई रही। कुछ देर बाद धृति किचन का काम समेटकर रूम में पहुंची तो अर्णव बेड पर टांगे फैलाए बैठा था और उस पर लैपटॉप रखकर कुछ काम कर रहा था। अर्णव का पूरा ध्यान लैपटॉप स्क्रीन पर था, या शायद बस धृति को ही ऐसा लग रहा था। धृति ने एक नज़र उसे देखा, फिर जैसे ही उसने बालकनी की ओर कदम बढ़ाए, अर्णव की कठोर आवाज़ उसके कानों से टकराई। मुझे बार बार अपनी बातों को रिपीट करना पसंद नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि मुझे रोज रोज तुम्हें एक ही बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्णव की बात सुनकर धृति चौंक कर पलट कर देखी तो अर्णव तीखी नजरों से उसे घूर रहा था। अर्णव ने आंखों से बेड की ओर इशारा किया, फिर वापस नजरें लैपटॉप पर गड़ा दीं। धृति आज बिना बहस किए चुपचाप आकर बेड के दूसरे तरफ बैठ गई। कुछ पल वो कभी अर्णव को तो कभी नजरें घुमाकर कमरे को देखती रही, फिर अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए जरा हिचकिचाते हुए बोली, सुनिए। बोलो, अर्णव ने अपनी कठोर आवाज में कहा जिसमें जरा भी नरमी नहीं थी। धृति अब और नर्वस हो गई और सकुचाते हुए धीमे स्वर में बोली, आज लंच के बाद आपकी कोई मीटिंग थी? हाँ, अर्णव ने लैपटॉप पर निगाहें गड़ाए हुए ही छोटा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर धृति ने चौंकते हुए कहा, कैसी मीटिंग थी? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अर्णव ने अब निगाहें धृति की ओर घुमाई और भौहें सिकोड़ते हुए सख्त लहजे में बोला, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम मेरी बॉस नहीं, जो मैं कुछ भी करूं तो तुम्हें बताकर या तुमसे पूछ कर करूं, और मेरे एम्प्लॉय होने के नाते तुम्हें मुझसे सवाल करने का अधिकार भी नहीं है। और पत्नी होने के नाते भी क्या मुझे आपसे कुछ पूछने का अधिकार नहीं? धृति के इस सवाल ने अर्णव को निशब्द कर दिया। कुछ पल वो खामोश सा धृति को देखता रहा, फिर नजरें फेरते हुए बोला, कल मुझे कहीं बाहर जाना है, 2-3 दिन लग जाएंगे वापस आने में, तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना और न ही यहाँ से कहीं जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में आने देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। और याद रखना कि मैं भले यहाँ न रहूँ, पर मेरी नज़र तुम्हारे हर मूवमेंट पर 24 घंटे रहेगी। अर्णव ने बात की शुरुआत नरमी से की थी, पर अंत तक आते आते एक बार फिर उसकी आवाज़ में सख्ती लौट आई थी और नज़रें धृति को घूरने लगी थीं। अर्णव जैसे ही धृति को धमकाकर चुप हुआ, धृति घबराकर बोल पड़ी, आप मुझे इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर चले जाएंगे? उफ, धृति की मासूमियत! वो उस इंसान के जाने से परेशान और व्याकुल हो रही थी जो दिन रात उसे सिर्फ दर्द ही दर्द देता है। पर ये व्याकुलता अर्णव के जाने की नहीं थी, बल्कि इस बड़े से महल में अकेले रहने की थी, जहाँ सबकी नज़रें उसे चुपती हुई सी प्रतीत होती थीं। कम से कम अर्णव की मौजूदगी से उसे उन नज़रों का सामना नहीं करना पड़ता था, पर अब यहाँ अकेले रहने के नाम से ही उसे घबराहट होने लगी थी। अर्णव धृति का सवाल सुनकर चौंक गया और पहले तो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा, फिर उसका ध्यान धृति के घबराए हुए चेहरे और व्याकुल निगाहों पर गया। इसके साथ ही उसके चेहरे के भाव कोमल हो गए। अगर तुम्हें अकेले यहाँ रहने में कोई परेशानी है तो माधुरी को अपने साथ रोक लेना, अर्णव ने जैसे ही ये कहा धृति चौंक कर बोल पड़ी। सच्ची? हाँ, अब सो जाओ। अर्णव ने हामी भरी, फिर अपने तरफ के लैंप को ऑफ करके लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखकर धृति की तरफ पीठ करके लेट गया। धृति को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अर्णव ने उसे माधुरी को साथ रोकने की इजाज़त दे दी। पहले तो वो अचंभित से उसे देखती रह गई, फिर उसके लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। जाने कितने वक्त बाद मुस्कुराई थी वो। धृति कुछ पल अर्णव को देखती रही, फिर वो भी बेड पर लेट गई। अगली सुबह धृति के उठने से पहले ही अर्णव जा चुका था, जिससे जाने क्यों पर धृति को थोड़ा बुरा लगा। वो भी बेमन से तैयार होकर ऑफिस चली आई, पर अर्णव की केबिन में कदम रखते ही चौंक गई, क्योंकि वहां से उसकी डेस्क और चेयर दोनों ही गायब थीं। धृति अभी खुद में ही उलझी हुई थी कि उसका डेस्क कहाँ गया। इतने में माधुरी मुस्कुराते हुए केबिन में दाखिल हुई और झट से आगे बढ़कर धृति के गले से लगते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस मैम, अब 3 दिन तक आपको सर का टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। ऑफिस में भी अब वो आपको ज्यादा परेशान नहीं कर सकेंगे और पूरे 3 दिन हम दोनों साथ रहेंगे और खूब इंजॉय करेंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे, बिना उस 10 सिर वाले यमराज के डर के खूब सारा वक्त साथ में बिताएंगे। माधुरी को देखकर लग रहा था कि अर्णव के जाने से धृति से ज्यादा खुश तो वही थी। धृति पहले तो उसकी बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गई, फिर धीरे धीरे उसे उसकी बातों का मतलब समझ आया और उसके लबों पर भी हल्की मुस्कान उभर आई कि 3 दिन वो माधुरी के साथ बिताएगी। एक रिश्ता सा जुड़ गया था उसका माधुरी के साथ। उसके साथ रहना अच्छा लगता था उसे, जबकि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलता था साथ में। कुछ देर बाद माधुरी धृति से अलग हुई और मुस्कुरा कर बोली, अब तो आप खुश हैं मैम, 3 दिन आप बिल्कुल फ्री हैं और हम ऑफिस के बाद साथ में रुकने वाले हैं। धृति ने उसके सवाल पर मुस्कुराकर हामी भर दी, हाँ मैं खुश हूँ, पर क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें रात को मेरे साथ रुकने देगी? मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती और अगर रहती होती तब भी उन्हें उससे कोई एतराज नहीं होता। माधुरी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और धृति की चिंता खत्म हो गई। वो खुलकर मुस्कुरा दी, पर अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने परेशान निगाहों से माधुरी को देखते हुए उससे सवाल किया, माधुरी मेरा डेस्क यहाँ नहीं है, कहाँ गया वो? अर्णव सर ने उसे यहाँ से हटवा दिया है। माधुरी ने जैसे ही ये कहा धृति चौंक उठी और हैरानी से बोल पड़ी, हटवा दिया? पर क्यों? अब मैं कहाँ बैठकर काम करूँगी?
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब से आपको कहाँ बैठकर काम करना है। माधुरी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और धृति को लेकर कैबिन से बाहर निकल गई। धृति किसी कठपुतली जैसे उसके साथ चलती रही। माधुरी उसे अर्णव के बगल वाले कैबिन में ले आई, जो अर्णव के कैबिन से सटा था और एक ग्लास वॉल के जरिए 2 हिस्सों में बटा हुआ था। मतलब ग्लास वॉल से पर्दे हटाए जाएं तो वो एक दूसरे को आराम से देख सकेंगे। उस कैबिन में धृति का डेस्क और चेयर लगे हुए थे। ये देखकर धृति शॉक्ड रह गई और आंखें फाड़े उस कैबिन को देखने लगी। वहीं माधुरी ने कैबिन में नजरें घुमाते हुए चहकते हुए कहा, मैम कैसा लगा आपको अपना न्यू कैबिन? बहुत खूबसूरत है ना? पता है मैम, मैं जब यहाँ काम करने आई थी तो मैं ये कैबिन चाहती थी। यहाँ का बाहर का व्यू बहुत प्यारा दिखता है और ये कैबिन बिल्कुल अर्णव सर के कैबिन जैसा है। आई एम ग्लैड कि आपको ये स्पेशल कैबिन मिला। अब से आप यहीं से अपना काम संभालेंगी और अर्णव सर 24 घंटे आपको टॉर्चर भी नहीं कर सकेंगे। माधुरी अलग ही ख्यालों की दुनिया में उड़ रही थी, जबकि धृति फटी आंखों से उसे देखने लगी थी। जैसे ही माधुरी चुप हुई, धृति ने आंखें भाड़े उसे देखते हुए हैरानी से सवाल किया, ये मेरा कैबिन है? धृति इतनी ज्यादा शॉक्ड थी कि उसके लबों से ठीक से शब्द भी बाहर नहीं आ रहे थे। माधुरी उसकी स्थिति समझ रही थी। उसने धृति के कंधों को थामा, फिर उसे ले जाकर उसकी चेयर पर बिठाकर मुस्कुराकर बोली, हाँ ये आपका कैबिन है और आज की सच्चाई यही है कि अर्णव सर ने आपको अलग कैबिन दिया है और अब से आपको यहीं से अपना काम संभालना है। इसलिए कितना ही शॉकिंग क्यों ना हो, पर आप इस सच्चाई पर विश्वास कर लीजिए कि अब आपको 24 घंटे उस जल्लाद दानव की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। धृति अब भी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्णव ने जानबूझकर उसे अपने कैबिन से काम करने कहा था ताकि उसे टॉर्चर कर सके। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने उसे अलग कैबिन दे दिया। अचानक ही धृति को कल की बात याद आई। कैसे गुस्से और दर्द में अर्णव पर चिल्लाते हुए उसने अपने मन की सारी भड़ास उस पर निकाल दी थी। उसे अपने दर्द और जिल्लत का जिम्मेदार ठहराया था। धृति मन ही मन सोचने लगी कि क्या उसी बात के कारण अर्णव ने अपना मन बदल लिया। सवाल बहुत थे पर आज फिर उसके पास कोई जवाब नहीं था। माधुरी कुछ देर उससे बातें करती रही, फिर काम का कहकर चली गई, पर धृति अपने ही सवालों में उलझी रही। सारा दिन निकल गया। अर्णव नहीं था तो उसके पास करने को ज्यादा काम भी नहीं था। धृति ने घूम घूम कर पूरे कैबिन को अच्छे से देख लिया था। वाकई ये कैबिन शानदार था। बैक साइड के ग्लास वॉल से समुद्र और सड़क पर चलती गाड़ियां नजर आती थीं। उस कैबिन में धृति के डेस्क और चेयर के साथ एक किंग साइज सोफा भी लगा था। सामने कांच की टेबल थी। कुल मिलाकर बिल्कुल अर्णव जैसा कैबिन था वो। जाने का वक्त हुआ तो माधुरी उसके पास चली आई। आज दोनों साथ में सिंह मेंशन आई। माधुरी ने फ्रेश होकर धृति के कपड़े पहने। बातों और हंसी मजाक के बीच दोनों ने मिलकर डिनर बनाया। साथ बैठकर मजे से डिनर का आनंद लिया। फिर रूम में आकर टीवी में मूवी लगाकर बैठ गईं और पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी का मजा लेने लगीं। मूवी देखते हुए माधुरी जोक्स भी मार रही थी, जिससे वो कमरा जहां या तो शांति या अर्णव की चीखों और धृति की सिसकियों की आवाज गूंजा करती थी, वहां आज हंसी ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। आज धृति के साथ वो बेजान कमरा भी खुशी से चहक उठा था। अपने जीवन के हर दर्द को भुलाकर धृति आज खुलकर हंस और मुस्कुरा रही थी, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ माधुरी थी। माधुरी को भी धृति के साथ वक्त बिताकर उसके साथ मस्ती मजाक करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसे यूं दिल खोलकर हंसते मुस्कुराते देखकर सुकून सा मिल रहा था। दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग हो चुकी थी। आधी रात तक दोनों खूब मस्ती करती रहीं, फिर एक दूसरे से लिपटकर सो गईं।